हम अपना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। जब भगवान इस धरती पर आया है अपना सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने, तो उसके साथ जो आत्माएं हैं वो हम हैं, जो उसके सहयोगी हैं, जो उसके हर पार्ट को देख रहे हैं और उसके हर पार्ट का आनंद ले रहे हैं। ऐसा हम सभी ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जब भगवान इस धरती पर आएगा तो हम भी उसके साथ होंगे। तो इस सभा में हम सभी आत्माएं महान आत्माएं हैं। क्या सभी अपने को महान समझते हैं? महान, जब हम ये बात कहते हैं तो कईयों का प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा सोचना ईगो है? सोचते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि हम महान हैं तो ये कहीं हमारा अहंकार तो नहीं है। परंतु हम सभी जानते हैं कि जितना महान हम अपने को समझते हैं उतना ही हमारा अहंकार नष्ट होता है। आज तक बाबा की मूल्यों में, अव्यक्त में विशेष रूप से, बाबा ने इसे कॉन्शियस पर बहुत ध्यान दिलाया है कि अपने को महान समझो। जो कुछ बाबा हमें समझने के लिए कहते हैं उसमें हमें केवल एक ही शब्द जोड़ देना है कि हम उसे स्वीकार कर लें। भगवान कह रहा है तुम महान हो, और हमारी आंतरिक चेतना, हमारी बुद्धि अगर ये कहने लगे कि तुम महान नहीं हो, तो भगवान के महावाक्यों में और हमारी समझ में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। तो हम महान हैं। क्यों महान हैं? बताएंगे आप क्यों महान हैं? हम भगवान के साथ हैं और भगवान ने स्वयं हमें चुन लिया और वो हमारा हो गया। एक सबसे बड़ी कॉन्शियस कि भगवान हमारा हो गया, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हम कहते थे भारत में जब भक्ति की जाती है और लोग भगवान की महिमा में गीत गाते हैं तो वो कहते हैं भारत में कि हे भगवान, जब तुम इस धरती पर आओ तो हमें अपना बना लेना। ये भारत में मंदिरों में लोग गाते हैं। बाबा ने कहा कि जब मैं आया इस संसार में तो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हें अपना बना लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम कैसे हो, तुम कितने पापी हो, पतित हो, ये कुछ नहीं सोचा, देखा नहीं, तुम जैसे भी हो स्वीकार कर लिया। परंतु एक और चीज मैंने की जो तुमने मांगी नहीं थी, और वो ये कि मैं भी तुम्हारा हो गया, भगवान हमारा हो गया। जरा इस बात पर हम चिंतन करें, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कोई सन्यासी, कोई किसी भी धर्म का बड़े से बड़ा लीडर, पोप, कोई आर्च बिशप, कोई भारत का महामंडलेश्वर शंकराचार्य, जो ये कहे कि भगवान मेरा है? है कोई संसार में ऐसा? कोई भी नहीं। बाबा ने हम सभी को ये अधिकार दिया कि हम उसे अपना कह सकते हैं। आज का टॉपिक है अपनी नाजुक नेचर को, नाजुक स्वभाव को कैसे बदलें। इससे पहले मैं आप सभी को इस एक बात पर ले आना चाहता हूँ कि इस संगम युग की सबसे सुंदर प्राप्ति, सबसे बड़ी प्राप्ति है भगवान हमारा है। मैं आप सभी को कहूंगा, आपने कर भी लिया होगा, परंतु जिन्होंने नहीं किया, आज से भगवान को अपना फ्रेंड बना लो। सभी बना लें। वो हमारा फ्रेंड बनकर आया है, सच्चा फ्रेंड, गॉड फ्रेंड। हम भी उसे अपना फ्रेंड स्वीकार कर लें और इस फ्रेंडशिप का आनंद लें। विचार करने की बात है, भगवान किसी का दोस्त बन जाए तो उसके लिए इस संसार में कुछ भी कठिन काम नहीं रहता। मैं इसके लिए एक उदाहरण दिया करता हूँ, आप सभी के सामने भी है वो, कि हमारी भगवान से फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो जाए, जैसे इस संसार में किसी बड़े व्यक्ति से अगर हमारी फ्रेंडशिप हो, मान लो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से आपकी फ्रेंडशिप है, तो आपको बहुत नशा रहता है और उस नशे में आप निर्भय रहते हैं, निडर, कोई डर नहीं। सोचते हैं कि जिंदगी में अगर कोई काम पर जाए तो फट से प्रेसिडेंट को फोन करेंगे, काम हो जाएगा, कोई डर नहीं। और अपने फ्रेंड्स और पड़ोसियों को भी कहते हैं कि अगर तुम्हें भी कोई काम पड़ जाए कभी तो क्या करना, हमें बताना, प्राइम मिनिस्टर अपना ही फ्रेंड है, हम उससे सब काम करा देंगे, कहते हैं ना। ऐसे ही हमारी दोस्ती भगवान से इतनी अच्छी हो जाए कि संसार में हम कह सकें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, कि अगर तुम्हें भगवान से कोई काम पड़े तो हमें बताना, वो हमारा ही फ्रेंड है, हम सब करा देंगे। इतनी समीप दोस्ती अगर हम उससे कर लें तो हमारा जीवन बिल्कुल सरल हो जाए, इससे भय निकल जाए, चिंताएं खत्म हो जाए। सोचने की बात है कि जिसका फ्रेंड भगवान हो उसको चिंता किसकी, क्योंकि संसार में आज दो ही चीजें मनुष्य के लिए सबसे बड़ी टेंशन का कारण बनी हैं, डर और चिंता। और जिनको साथ दे रहा हो भगवान, सच्चा दोस्त बनकर जिनकी चिंता भगवान करता हो, उन्हें अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो स्वीकार है भगवान की दोस्ती, है ना, सभी को भगवान को अपना दोस्त बनाएं। और कोई आपसे पूछे जवाब तो आप बहुत नशे से उत्तर दे सके, भगवान को दोस्त बना कर आए हैं, तो ये जीवन खुशियों से खिल उठेगा। और फिर अपने जीवन में प्रैक्टिस करनी है कि दोस्त सदा साथ रहता है। कि इस समय आप इस रूप से योग का सरल अभ्यास और करें कि जैसे ही बाबा को याद किया और बाबा नीचे उपस्थित हो गया। जैसे हम बाबा को योग नहीं लगाते लेकिन उसको बुला लेते हैं अपने पास, तो उसकी प्रेजेंस को फील करें, महसूस करें कि वो नीचे आ गया है, हमारे पास है, तो अनुभव होने लगेगा कि योग एक प्रैक्टिस नहीं है, योग अर्थात भगवान के साथ रहना। तो उसके साथ के अनुभव से उसके सारे संस्कार हमारे जीवन में आते जाएंगे। और यही रहस्य है इस जीवन को डिवाइन करने का, इस जीवन को दिव्य बनाने का। हम सभी बाबा के पास आए, भाई कम हो गया, हम सभी बाबा के पास आए हैं अपने संस्कारों को, अपनी नेचर को चेंज करने के लिए। चाहे हमारी नेचर नाजुक हो गई हो, चाहे अब इस नाजुक नेचर के साथ कई बातें जुड़ी हुई हैं, किसी की नेचर क्रोधी हो गई हो, बहुत सेंसिटिव हो गई हो, अहंकारी स्वभाव हो गया हो, बार बार अपसेट होने की आदत पड़ गई हो, इन सभी तरह की नेचर से हमें मुक्त होना है। बाबा जो हम सभी को पढ़ाने आया है, बाबा जो हम सभी को इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने आया है, वो हमें देखना चाहता है कि मेरे बच्चों की नेचर ऐसी हो जिन्हें देखते ही दूसरों को शांति मिल जाए, खुशी मिल जाए, शक्तियां मिल जाए, धैर्यता मिल जाए। बाबा को कैसा लगेगा अगर वो देखे कि मेरे बच्चे अपसेट हो रहे हैं। भगवान के बच्चे अगर डिस्टर्ब होते रहे तो इस संसार में अडोल कौन होगा। वो हम सभी के लिए स्वर्ग रचने आया है, हम जानते हैं, न केवल रचने आया है लेकिन स्वर्ग की चाबी, स्वर्ग का राजभाग हमारे हाथ में देकर जाएगा। जैसे अपने रचे हुए संसार को दो युगों के लिए हमारे हाथ में सौंप कर वापिस चला जाएगा, उसे विश्वास होगा कि हम उसके राज्य को बहुत अच्छी तरह संभालेंगे। इतना शक्तिशाली, इतना पवित्र वो हमें बनाने आया है। और अगर वो देखे कि जिन्हें संसार को संभालना है उनकी नेचर बहुत नाजुक है, तो क्या उसको विश्वास होगा कि मेरे ये बच्चे स्वर्ग को संभाल सकेंगे? नहीं होगा। इसलिए हम जो इस संसार में नया धर्म और नया राज स्थापित कर रहे हैं, जरा हम अपने कर्तव्य को याद करें। केवल योग लगाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, केवल छोटी मोटी सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, दो बहुत बड़े काम हम सभी को करने हैं, धर्म की स्थापना और राज्य की स्थापना। और आप सभी अपने अपने देश में या भिन्न भिन्न धर्मों की हिस्ट्री को जानने के कारण ये जानते हैं, जब किसी धर्म की स्थापना की गई तो धर्म स्थापक को और दूसरे फॉलोवर्स को कितना कष्ट सहना पड़ा। जब किसी ने अपने देश को स्वतंत्र कराया, किसी डिक्टेटर से छुड़ाया, किसी राजा को हटाया, तो जनता को कितने कष्ट सहने पड़े। उसमें अगर कोई व्यक्ति नाजुक रहा होता तो क्या नाजुक व्यक्ति, क्या कमजोर व्यक्ति, क्या सेंसिटिव व्यक्ति धर्म की और राज्य की स्थापना कर सकता है? कर सकता है? उससे कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ये संसार में कोई बहुत बड़ा काम करने के निमित्त बन सकता है। हम सभी जो बाबा के पास आए हैं और बाबा ने हम सबको एक चैलेंज दिया हुआ है कि तुम्हें इस रावण राज को समाप्त करना है, तुम्हें इस धरती पर सत्य धर्म की स्थापना करनी है, तुम्हें अपना राज्य बनाना है, तो हम सभी को बहुत पावरफुल होना चाहिए। नाजुक नेचर हमें कुछ नहीं करने देगी। आप जानते हैं जिस व्यक्ति की नेचर बहुत नाजुक होती है उसको जीवन में कभी भी खुशी का अनुभव नहीं होता, एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होता, योग भी नहीं लगता। अब एक प्रश्न है यहाँ कि मनुष्य की नेचर नाजुक क्यों हो जाती है? जरा सोचेंगे इस पर, क्यों किसी की नेचर नाजुक हो गई? हम अपनी मूल नेचर को याद करें। जब हम इस संसार में आए थे तो हमारी नेचर कैसी थी? कैसी थी नेचर? बोलेंगे जरा, हिंदी वाले ही बोल दें, इंग्लिश वाले नहीं तो नींद आने लगेगी। हमारी नेचर में संपूर्ण शांति थी और हमारी नेचर बहुत स्ट्रांग थी, शक्तिशाली थी, आनंदमय थी, सदा खुश रहने का स्वभाव था, दुख का नाम नहीं था। हमारी नेचर वो थी जो हम सभी आत्मा के पहले लेसन में सुनते हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये सुनते हैं ना, ये सब हमारी मूल नेचर है। जब हम इस संसार में आए तब हम इन सभी तरह की स्वभाव से पूर्ण थे, जीवन पूरा आनंदित था। क्या हुआ, कहां हमने अपनी डायरेक्शन बदल दी जो कईयों की नेचर बड़ी सेंसिटिव हो गई, बड़ी नाजुक हो गई? विचार करो जरा, क्यों ऐसा हुआ है? किसी की नेचर तो बहुत स्ट्रांग होती है, कोई व्यक्ति बहुत बोल्ड होते हैं इस दुनिया में, ब्राह्मणों में भी, और कोई व्यक्ति बहुत नाजुक। जरा सा किसी ने कुछ कहा और मूड ऑफ, जरा सी कोई बात हुई और अपसेट, किसी ने कोई कमेंट कर दिया और डिस्टर्ब हो गए। इतना ही नहीं, अगर एक बार रूम चेंज करना पड़ गया तो खुशी से कर लिया, लेकिन अगर दूसरी बार भी करना पड़ा तो सारी रिफ्रेशमेंट गायब हो गई। तो ऐसी नाजुक नेचर जिसमें मनुष्य अपने को एडजस्ट नहीं कर सकता, क्यों बन गई मनुष्य की? इसके कई कारण हैं। ऐसे तो एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का प्रश्न है, परंतु मैं इसके कुछ थोड़े से पहलुओं पर ही आपके सामने कुछ चर्चा रखता हूं। एक बात कि अगर किसी मनुष्य को इस जीवन में प्यार न मिला हो, क्योंकि हर एक को प्यार की कामना रहती है, तो नेचर नाजुक हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को प्यार में बार बार धोखा मिला हो तो नेचर नाजुक हो जाती है। परंतु इन सब से पहले नेचर को कमजोर करने वाला है काम विकार। काम विकार के संस्कार मनुष्य की नेचर को सबसे ज्यादा नाजुक बना देते हैं। एक एक विकार का मनुष्य की नेचर को कमजोर करने से संबंध है। तो बाबा ने हम सभी को इसलिए पहले पहले ही आके पवित्रता का वरदान दिया। जो आत्माएं पवित्रता को सहज भाव से धारण कर लेती हैं, उनकी नेचर तो स्वीट हो जाती है। लेकिन जो आत्माएं पवित्रता में संघर्ष का सामना करना करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, उनकी नेचर फिर से नाजुक हो जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति को जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़े उसकी नेचर भी नाजुक हो जाती है, चाहे वो संघर्ष जीवन के किसी भी फील्ड में क्यों न हो। चाहे किसी मनुष्य को रोज रोज समस्याओं से लड़ना पड़े, चाहे जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा साथी हो, प्राय परिवारों में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो डिस्टर्ब करता रहता है बार बार, तो अगर किसी को बार बार डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता हो तो उस व्यक्ति की नेचर भी बहुत नाजुक हो जाती है। तो हम सभी को अपनी नेचर को स्ट्रोंग बनाना है, और उसका तरीका है अपनी मूल नेचर को इमर्ज करना। ये कैसे होगा? जो हमारा मूल स्वभाव है, जिसकी हमें बाबा ने याद दिलाई है कि तुम ऐसे थे, हम उसको इमर्ज कैसे करें? एक तरीका, बाबा की अव्यक्त बाबा की मुरलियों में आपने सुना हो इस साल भी पिछले साल भी, कि तुमने रावण के संस्कारों को अपना संस्कार कह दिया। जो चीज रावण की है तुम कह देते हो ये मेरी नेचर है, वो तुम्हारी नेचर नहीं है, वो रावण की नेचर है, माया की नेचर है, तुमने पराई चीज को अपना कह दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। अब आप एक साइकोलॉजिकल पॉइंट पर जरा ध्यान देंगे, जिस चीज को हमारा विवेक अपना कह देता है, जिस भी बात को, जिस भी धारणा को हमारी अंदर की कॉन्शियसनेस अपना कह देती है, उसको धारण करना सहज हो जाता है। और जिस चीज को हमारा विवेक पराई समझता है वो जीवन में बहुत देर से धारण होती है। ये बात हमारी हर धारणा के बारे में है। हर धारणा को लेकर अगर आप ऐसा चिंतन करें कि ये धारणा मेरी है, ये नेचर मेरी है, हम इसको शुरू कर दें प्योरिटी से। बाबा आया, बाबा ने हमें याद दिलाया कि तुम पवित्र आत्माएं हो, दो युग तुमने पवित्रता में बिताए हैं, पवित्रता तुम्हारी मूल नेचर है। जिन्होंने स्वीकार कर लिया वो बाबा के बच्चे बन गए, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने कहा कि नहीं, मेडिकल साइंस कहती है कि इम्प्योरिटी तो मनुष्य की भूख है, प्योरिटी नेचुरल नहीं है, इम्प्योरिटी नेचुरल है, जिन्होंने कहा कि पवित्रता हमारा अपना संस्कार नहीं है, उनको पवित्रता धारण करना कठिन हो गया। जिस व्यक्ति ने मान लिया मुझे बहुत क्रोध आता है, जो बार बार कहता है क्रोध करना मेरा संस्कार है, अर्थात उसने माना हुआ है कि क्रोध मेरा है, इसलिए क्रोध उससे छूट नहीं रहा। आप शांति में बैठकर रोज अपने को ऐसे थॉट्स दें कि क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, शांति मेरा संस्कार है, तो क्रोध का स्थान शांति लेने लगेगी। अपने संस्कारों को चेंज करने का ये स्वयं से बात करने का बहुत अच्छा तरीका है। सिद्धांत हो गया कि जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं वो सहज जीवन में आती है, जिसको अपना नहीं मानते वो पराई हो जाती है, चली जाती है। साधारण रूप से भी हम देखते हैं जिसको हम अपना कहते हैं उससे हमारा प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, जिसको हम अपना नहीं समझते उससे हम डिटैच रहते हैं। दूसरी बात अपनी मूल नेचर को इमर्ज करने की, वो है हम देही अभिमानी बन जाएं। ये बात नई नहीं है, हम सभी ने हजारों बार सुनी है, पर मैं इसको आपके सामने केवल दो बातों के रूप में रखता हूं। सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस, एस रेडी होने की प्रैक्टिस हमें अपने जीवन में भिन्न भिन्न रूप से करनी चाहिए। मैं एक दो पॉइंट आपके सामने रखता हूं, आपको मदद मिलेगी ऐसे रीडी होने के लिए। थोड़ी देर के लिए आप शांत में बैठकर ऐसा विचार करें कि मेरे ये शरीर के तत्व धीरे धीरे तत्वों में मिलने लगे। जैसे हमारा शरीर ये जो पांच तत्वों से बना हुआ है, ये पांचों तत्वों में मिलने लगे और धीरे धीरे ये हमारा सारा शरीर लोप हो गया और मैं रह गई चमकती हुई मणि एक आत्मा। अपने को आत्मा विजुअलाइज कर ले, देख ले। ये एक बहुत सुंदर तरीका है अपने इस रूहानी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, कि हम विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें, देखने का। बुद्धि जो हमारा तीसरा नेत्र है, उससे हम अपने स्वरूप को देखें। दूसरी विधि, मैं आत्मा राजा हूं और भ्रकुटि मेरा सिंहासन है। इस सिंहासन पर मैं आत्मा राजा देह की मालिक बैठी हूं। अपने को भ्रकुटि सिंहासन पर बैठा हुआ देखें। ये दो प्रैक्टिस आप अपने जीवन में बढ़ाएं तो सोल कॉन्शियस होना बहुत इजी हो जाएगा। और जैसे जैसे सोल सोल बनेगी, मूल संस्कार इमर्ज होंगे। इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ दूं, सोल कॉन्शियस बनने की ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जिससे हमारे संस्कार डिवाइन हो जाते हैं, जिससे हमारी खुशी बढ़ती है, हमारा नशा बढ़ता है। परंतु स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाएं, मैं आपके सामने बहुत सरल रूप उसका रख देता हूं और आप घुमाकर देखें, अनुभव करें कि इससे हमारे संस्कार किस तरह डिवाइन होते हैं, हमारे अटैचमेंट नष्ट होते हैं, हमारी बुद्धि विशाल होती है। जैसे एक उदाहरण है छोटा सा, जैसे आप अब जब मधुवन में आए हैं, जब से आप अपने घर से चले और आज तक 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन, आप अगर पास्ट को याद करें कि हम अपने घर से चले थे, किस किस तरह प्लेन में बैठे, इंडिया में आए, फिर यहाँ मधुवन में पहुंचे, बाबा को देखा, बाबा ने झंडा लहराया, हम बाबा की पहाड़ी पर घूमने गए, हम सनसेट देखने गए, जस्ट वापिस लौट जाओ, अपने पिछले 8 दिन में वापिस लौटो और वहां वहां पहुंचो जहां जहां से आप गुजर कर आए हैं। 8 दिन की यात्रा को 8 मिनट में तय करो, 8 दिन की यात्रा 8 मिनट में। एक दूसरा उदाहरण है कि एक व्यक्ति को अगर याद आ जाए कि 10 साल पहले उसके जीवन में कोई बहुत बुरी घटना घटी थी, वो अचानक उसे याद आ जाए तो क्या होगा, अब दुख होने लगेगा। कितने भी हम खुश बैठे हों, लेकिन 10 साल पहले की घटना तुरंत अपना इफेक्ट डाल देगी और हमें दुख की फीलिंग होने लगेगी। इसी तरह अब जरा डीपली सोचना है, हम सभी परम धाम से चले थे अब से 5000 साल पहले, 5000 साल की अपनी यात्रा को अब यहां से वापस लौटो और 15 मिनट में तय करो, पहुंचो जहां जहां से होकर आए हैं, कोशिश करो याद करने की, जब हम इस संसार में उतरे तो कैसे थे, कैसे दिव्य देवता इस शरीर में थे, बैठो वहां जाकर, वहां क्या क्या था उसको देखो, कैसे 20-21 जन्म लिए, नीचे उतरे, कभी मेल बॉडी में कभी फीमेल बॉडी में, शरीर चेंज करते करते हम नीचे आए, कभी हमने राज किया, कभी हम प्रजा में आ गए, कभी हम भक्ति में लगे रहे, कभी हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते रहे, कभी बिल्कुल साधारण काम करते रहे। इस तरह अपने पूरे 5000 साल को, इस यात्रा को 15 मिनट में तय करो और देखो क्या अनुभव होता है। आज आप एक बार करके देखना इसको, बिल्कुल शांत में बैठकर, चाहे आंख बंद करके करना, पहुंचना आदि में और वहां से उतरना शुरू करना, किस तरह हमने यात्रा की और अब इस यात्रा के अंत में क्या हुआ है, जब हमारी यात्रा अंत में पहुंची तो भगवान आ गया नीचे हमें गाइड करने के लिए, हमें साथ देने के लिए, हमें वापस ले जाने के लिए, और उसने अपना साथ देकर हमारी विजय का झंडा लहरा दिया और अब वो हमें साथ ले जाएगा। इस तरह के चिंतन और दर्शन से, हम दो शब्द कर रहे हैं यहाँ, केवल चिंतन नहीं, दर्शन, विजुअलाइजेशन, चिंतन और दर्शन से हमारे संस्कार डिवाइन होंगे, एक नई दृष्टि मिलेगी, एक नई दृष्टि जिससे हम बहुत कुछ देख सकेंगे। और ये दृष्टि जब हमें प्राप्त होगी तो हमारा योग और हमारा संपूर्ण जीवन पूरा ही आनंदकारी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था, अपने मूल संस्कार स्वभाव को इमर्ज करने का, जिससे हमारे अब के संस्कार स्वभाव, चाहे वो नाजुक हैं, चाहे क्रोध के हैं या अहंकार के हैं, सभी समाप्त हो जाते हैं और हम एक शक्तिशाली स्थिति की ओर चलने लगते हैं। नेक्स्ट बात है जो हम सभी के लिए और आवश्यक है इस जीवन में, मैंने अपने इस जीवन में अपने से भी एक्सपेरिमेंट किया। मुझे याद है अब से बहुत साल पहले, करीब 25 साल पहले, मेरी नेचर भी नाजुक थी, बिल्कुल सेंसिटिव, और मुझे ये फील हुआ कि ये नाजुक नेचर इस जीवन के लिए बहुत खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम नाजुक रहे, डेलिकेट रहे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस जीवन में, इसलिए इसको छोड़ना है। कैसे छूटी, मैं अपने अनुभव की बात आपके सामने रखता हूं, और वही अनुभव मैंने बहुतों के साथ कराए हैं एक्सपेरिमेंट्स, और बहुतों को उसमें सफलता मिली है। एक बात है अपनी मनन शक्ति को बढ़ाना, और दूसरी चीज है अपने स्वमान को बढ़ाना। इस सभा में मुझे पता नहीं बहुत सारे बाबा के नए बच्चे स्वमान को कितनी गहराई से समझते हैं या नहीं, क्योंकि स्वमान एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसको हम जीवन भर समझते जाते हैं, उसमें बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है, और जिस आत्मा ने स्वमान को जितना समझ लिया है उतना ही उसका योग सरल हो जाता है, संकल्प शांत हो जाते हैं, जीवन शक्तिशाली बन जाता है। मैंने बहुत पहले 74 में अव्यक्त मूल्य में सुना था कि स्वमान में स्थित हो जाना यही संपूर्णता है, स्वमान में स्थित हो जाना ही संपूर्ण योग है। योग में जो खेचातान है, योग में जो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, वो सब भी खत्म हो जाती है स्वमान के द्वारा। तो सबसे पहले हम सभी बाबा के बच्चे, क्योंकि अब स्टूडेंट हैं, आयु में बड़े हैं पर हैं सब स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट लाइफ व्यतीत करने के लिए, स्टूडेंट लाइफ का आनंद लेने के लिए हम सभी को अपनी मनन शक्ति अवश्य बढ़ानी चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ानी तो चाहिए, पर बहुतों का मनन चलता नहीं है, कुछ भी सोचने बैठते हैं तो बुद्धि दूसरी ओर चली जाती है, मन और बुद्धि में हार्मनी नहीं है, समन्वय नहीं है, बुद्धि कुछ काम करती है, मन कुछ और काम करने लगता है। इससे पहले मैं एक बात और इसी संबंध में आपके सामने रख दूं, जो आपको दूसरों को समझाने में बहुत काम आएगी, कि जैसे आत्मा की शक्तियां मन और बुद्धि हैं, वैसे ही इस शरीर को चलाने वाला अंग जो सबसे प्रमुख है, हम सब जानते हैं, वो है ब्रेन, मनुष्य का मस्तिष्क। आज तक फिलोसोफी में, सारे वर्ल्ड की फिलोसोफी में और साइकोलॉजी में, मेडिकल साइंस में भी, एक बहुत बड़ी मिसिंग हुई मनुष्य से, शुरू हुई फिलोसोफी से, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने ये कहा कि मन और बुद्धि आत्मा से अलग है। आप लोगों के पास विदेशों में इसकी चर्चा शायद न होती हो, पर इंडियन फिलोसोफी का ये एक बहुत ही प्रमुख अंग है, मन बुद्धि आत्मा की शक्तियां नहीं हैं, प्रकृति की शक्ति है। और बाबा ने हमें आकर बताया मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं। ये कंफ्यूजन पीछे साइकोलॉजिस्ट में भी रहा, उन्होंने भी यही समझा कि मन और बुद्धि अलग चीज है और ब्रेन ही मन है, ब्रेन ही बुद्धि है। ब्रेन को ही मन और बुद्धि मानने की भूल हो गई और इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धि को डिफाइन करने का बहुत प्रयास किया। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ें तो उसमें बुद्धि की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं और बहुत सारी डेफिनेशंस के बाद भी साइकोलॉजिस्ट संतुष्ट नहीं हुए, वो नहीं समझ पाए कि बुद्धि आखिर है क्या। तो ब्रेन जो एक मशीन है, एक कंप्यूटर है, जिसके द्वारा मन और बुद्धि काम करते हैं, हमें ये भी जानना चाहिए कि मनन के लिए हमारे ब्रेन का शक्तिशाली होना भी आवश्यक है। इसीलिए बाबा ने दो चीजें कही हैं ब्रेन की स्वच्छता के लिए, एक प्योरिटी, दूसरा खान पान की शुद्धि। वो व्यक्ति जिसका खान पान शुद्ध नहीं है, ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, उसका ब्रेन उतना स्वच्छ और डिवाइन नहीं रह सकता कि वो मनन करे। इसलिए अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ रखने के साथ साथ हमें अपने ब्रेन को भी स्वच्छ रखने का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह मनन शक्ति बढ़ाने के लिए रोज कुछ न कुछ लिखने का अभ्यास किया जाए। स्टूडेंट लाइफ है तो रोज पढ़ना और लिखना होना चाहिए, दोनों आवश्यक हैं। अगर हम नहीं कुछ भी लिखते रोज तो हमारे विचार डल होते जाते हैं। और सभी को मालूम होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में रोज एक बार बहुत श्रेष्ठ विचारों का फ्लो आता है। हर एक चेक कर ले, रोज कोई ना कोई समय ऐसा होता है जब मन में बहुत सुंदर विचारों का फ्लो आता है, उसको नोट किया जाए रोज, तो वही श्रेष्ठ विचार अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सबसे बड़ा काम करेंगे। इस तरह मनन शक्ति सभी को बढ़ानी है अपनी नाजुक नेचर को ठीक करने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास अच्छे संकल्प होंगे तब हम दूसरों की द्वारा किए गए डिस्टरबेंस को न्यूट्रल कर सकेंगे। जब हमारे पास संकल्पों का बल होगा तब हम किसी भी परिस्थिति का सहज सामना कर सकेंगे। संकल्पों का बल बहुत आवश्यक है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस ब्राह्मण जीवन का रस लेने के लिए जितने श्रेष्ठ संकल्पों की रचना हम कर सकें उतना ही हमारा जीवन महान होगा, हम सभी समस्याओं से बच जाएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे नेचर का निर्माण होता है हमारे संकल्पों के द्वारा। हम अपने संकल्पों को, सोचने के तरीके को चेंज करें। सोचने का तरीका किसका कैसा है, हर एक व्यक्तिगत रूप से अपने को चेक करें। हमारा सोचने का तरीका किस तरह का है? हमारा सोचने का तरीका ही हमें खुशी देता है या गम, शांति का अनुभव कराता है या अशांति का, हमें शक्तिशाली बनाता है या कमजोर, ये केवल सोचना ही है। और अगर हम ये कहें कि जीवन को बदलना, दूसरे शब्दों में सोचने के तरीके को बदलने का ही नाम है, जब हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सोचने के तरीके में पहली चेकिंग हम करें कि कहीं हम ज्यादा तो नहीं सोचते। नाजुक नेचर का एक ये भी प्रत्यक्ष में स्वरूप होता है कि मनुष्य ज्यादा सोचता है। और ज्यादा सोचने में, जब कोई व्यक्ति ज्यादा सोचता है तो उसमें व्यर्थ अनुमान डाउट ये सब मिक्स हो जाते हैं और परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए पहली चेंज ज्यादा सोचने की करनी चाहिए। ज्यादा सोचने की नेचर को अगर हमें ठीक करना है तो बाबा ने हम सभी को एक बहुत अच्छी चीज सिखा दी है, वो है सरलता, इजी नेचर। अपनी नेचर को सरल बनाएं। और सरल कैसे बनती है, जरा सा प्रैक्टिस करेंगे जीवन में कि कोई भी बात हो जाने पर, कोई परिस्थिति आ जाने पर, किसी के बुरे बोल देने पर, हम किसी भी बात को सीरियसली न लें, हम किसी के शब्दों को वैल्यू न दें, हम वैल्यू दें अपनी संकल्प शक्ति को। और हमें ये ज्ञान रहे कि अगर हम अपनी संकल्प शक्ति को बचाते हैं, उसको एकाग्र करते हैं, तो हमारी संकल्प शक्ति हमारी सभी समस्याओं को हल कर देती है। इसलिए सबसे अधिक वैल्यू की बात है हमारे संकल्प। जब हम दूसरों के शब्दों को वैल्यू देते हैं तो सीरियसली लेते हैं और तब ज्यादा सोचना होता है, ज्यादा सोचने की नेचर पड़ जाती है। इसलिए अभ्यास करेंगे सभी, दूसरे के शब्दों को वैल्यू देने के बजाय अपने संकल्पों को वैल्यू दें। और दूसरी चीज जो बाबा ने अंडरलाइन कराई है इस मुरली में, निगेटिव तरीका जो है सोचने का, उसको भी चेक करें और पॉजिटिव में बदलें। पर मैं इन सब के साथ एक चीज ऐड कर देता हूं कि अपने जीवन में सभी बाबा के बच्चे शक्तिशाली संकल्पों को क्रिएट करें। मेरे अपने जीवन का मैं अपने अनुभव में सबसे सुंदर अनुभव समझता हूँ, श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करने से जो प्राप्त होता है वो अनुभव। क्योंकि हमारी सारी फीलिंग्स, अनुभव, स्वभाव, संस्कार हमारे संकल्पों पे आधारित हैं। इसलिए जिस पुरुषार्थी ने श्रेष्ठ संकल्प रचना सीख लिया है, उसने जीवन सुखी बनाने की कला सीख ली। हम अपने जीवन को अपने संकल्पों के अनुसार दिशा देते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं हम अपने जीवन की अपने संकल्पों के अनुसार। और इस समय विशेष रूप से जब हम योग अभ्यास कर रहे हैं, जब हमने पवित्रता को अपनाया है, तो हमारा एक एक संकल्प कुछ क्रिएट करता है। हमें ये जानना चाहिए, हमारा कोई भी संकल्प खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ क्रिएट करता है। अगर श्रेष्ठ संकल्प हैं, तो श्रेष्ठ क्रिएशन, अगर व्यर्थ संकल्प हैं, तो डिस्ट्रक्शन, बुरी परिस्थितियों का निर्माण होगा। तो हमें शक्तिशाली संकल्पों को क्रिएट करना है। मैं उदाहरण दे रहा, शक्तिशाली होती है जिसने माया के चैलेंज को स्वीकार कर लिया हो, वो शक्तिशाली होते हैं। जिसने भगवान के चैलेंज को स्वीकार किया हो, वो शक्तिशाली होते हैं। जो सोचते हो कि हमें संसार को बदलना है, वो शक्तिशाली होते हैं। तो पहली चीज हमारी आंतरिक कॉन्शियसनेस स्वीकार कर ले कि हम इस संसार में सबसे शक्तिशाली आत्माएं हैं। चाहे हमें अपने में कमजोरी दिखाई भी देती हो, परंतु कुछ महानताएं हमारे अंदर छुपी हुई हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। हम शक्तिशाली हैं क्यों? अब आगे हम चिंतन करते हैं कैसे हमें सोचना है कि जैसे शिव बाबा इस धरती पर आया और हमने उसे पहचाना, अपना बाप कहा, उसने हमें सारी शक्तियां गिफ्ट के रूप में दे दी। सर्वशक्तिवान ने हमें शक्तियां दी हैं, तो हमसे अधिक शक्तिशाली और कौन होगा? इस तरह विचार करेंगे कि हमारे पीछे हमारे ऊपर ऑलमाइटी है, हम कमजोर कैसे हो सकते हैं। जिन्हें जीवन में भगवान साथ दे रहा हो वो कमजोर नहीं होते, शक्तिशाली हैं। इस तरह अपने अंदर शक्तिशाली संकल्पों को क्रिएट करें। और आगे आप सोच सकते हैं, भगवान हमारे साथ है इसलिए संसार में हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हम सिर्फ शक्तियां हैं, मास्टर ऑलमाइटी हैं, 8 भुजाएं हैं हमको, हम शक्तिशाली हैं। हमें संसार में नए धर्म और राज की स्थापना करनी है, रावण को नष्ट करना है, हम बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। इस तरह अपनी शक्तियों को इमर्ज करने के लिए रोज शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करें। आप पाएंगे 1 मास अगर आप ऐसे संकल्पों की रचना करें तो आपको अनुभव होगा कि हम शक्तिशाली हैं। और ये फीलिंग कि मैं शक्तिशाली हूं हमारी सभी परिस्थितियों को नष्ट कर देगी। हमें ये याद रहना चाहिए। एक बहुत सुंदर सिद्धांत जो बाबा ने अपनी मुरली में बताया, एक बहुत डीप फिलोसोफी जिसको बहुत कम ब्राह्मण जानते हैं, अब आप उसको अनुभव करके देखेंगे। वो क्या है कि योग अभ्यास में हम बाबा से शक्तियां रिसीव करते हैं, परंतु वो शक्तियां वाइब्रेशंस के रूप में चारों ओर फैलती हैं हमारी कॉन्शियस के अनुसार। जैसे हम योग करने के साथ साथ अगर ये संकल्प करें कि मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूं, तो योग के वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं के दुख हरने लगेंगे। योग करने के साथ अगर हम ये संकल्प करें कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमें हर कर्म में सफलता मिलने लगेगी। योग के साथ अगर हमने ये स्मृति लाई कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो हमसे चारों ओर शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलेंगे और कमजोर आत्माओं को बल मिलने लगेगा। योग में बैठते समय अगर हम ये संकल्प करें कि मैं प्रकृति की मालिक हूं, मुझे प्रकृति को पावन करना है, तो योग के वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन करने लगेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं एक विघ्न विनाशक आत्मा हूं, तो हमारे योग के वाइब्रेशंस हमारे और दूसरों के विघ्न नष्ट करने लगेंगे। ये एक बहुत डीप फिलोसोफी है जिसके द्वारा हम बाबा की सेवाओं में दूसरी आत्माओं को शांति देने में, उनके दुख हरने में, उनके विघ्न नष्ट करने में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। परंतु हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारे वाइब्रेशंस उतना ही काम करेंगे जितना अच्छा हमारा योग होगा। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, योग की शक्ति हमें सफलता दिलाएगी। तो इस तरह अपने को, इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में, श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित करते चलें। अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने संस्कारों को बदलने के लिए श्रेष्ठ स्मृतियां सबसे ज्यादा मदद करती हैं। इसलिए जीवन में संघर्ष की जरूरत नहीं, स्ट्रगल की जरूरत नहीं कि क्रोध आ रहा है उसको छोड़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अशांति होती है शांत में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं। अपनी ऊंची स्मृति में रहें, मैं मास्टर शांति दाता हूं, मैं शांति की अवतार हूं, स्वतः ही जीवन शांति से भर जाएगा। इस तरह हम अपने संस्कार और स्वभाव को चेंज कर सकते हैं। शक्तिशाली संकल्प हम क्रिएट करेंगे तो नाजुक नेचर स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नाजुक नेचर का अर्थ है आत्मा बहुत कमजोर है, मन बहुत निर्बल है, बुद्धि बहुत निर्बल है। मनन के द्वारा स्वमान के द्वारा, शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करने के द्वारा हम अपनी नेचर को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। एक बात मैं और जोर दूं पूरे जीवन के लिए, वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, परिवर्तन की इच्छा, हमारी विल पावर को, परिवर्तन शक्ति को बढ़ा देती है। मुझे परिवर्तन होना है, ये इच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग विल कि मुझे बदलना है, मुझे अपने इस संस्कार को, इस स्वभाव को, इस नेचर को बदलना है, ये इच्छा दृढ़ता में बदलकर हमें सफलता दिला देती है। तो इस तरह जितने महान स्वमान में हम रहेंगे, छोटी छोटी चीजें हमसे पीछे चली जाएंगी और हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा, और नाजुक नेचर हमें ऐसे लगेगी कि वो तो किसी और की है। तो हमें संकल्प कर लेना है अपने जीवन में, जिसकी भी नाजुक नेचर हो, कि इससे मुक्ति पानी है, क्योंकि नाजुक नेचर जीवन के लिए सबसे अधिक खतरनाक है। उसका जीवन कभी शांत नहीं होता, खुशियों में नहीं रमण करता, अच्छे काम नहीं कर सकता, कोई उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता, उसकी कंपनी कोई नहीं चाहता। जो व्यक्ति बहुत नाजुक है, सब सोचेंगे इसके साथ रहेंगे तो इसे ही संभालना पड़ेगा। सारा दिन हमें अपनी स्थिति को ठीक रखने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। इसलिए हम अपने को इतना स्ट्रोंग बनाएं, अपनी नेचर को इतना दिव्य बनाएं कि हमसे सारे संसार को प्रेरणा मिले, तब हमारा जीवन प्रेरक बन जाएगा, यादगार बन जाएगा, और हमें देखकर इस संसार की अनेक आत्माएं अच्छी प्रेरणा लेंगी और बाबा के समीप आएंगी। अब अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो 15 मिनट के लिए, तो आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में या किसी और बात के बारे में। क्वेश्चंस, ये तो अच्छी बात है कि नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए बाबा के बच्चे बैठे हैं। या मैं और कुछ बातें बताऊं जीवन के लिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो हाथ उठा सकते हैं। बोलो। यस, आई कैन नॉट हियर। यस यस प्लीज। हमारी जो भावनाएं हैं, इनका प्रश्न है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो कैसे काम करते हैं। ये एक दूसरा साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है कि मनुष्य को इमोशनल भी होना चाहिए और भावुक भी होना चाहिए, और इतना भावुक न हो जाना चाहिए कि नेचर नाजुक हो जाए। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, क्योंकि भावुकता नाजुकता के बहुत समीप आ पहुंचती है कहीं कहीं। हमारा इमोशनल होना अर्थात बाबा के प्रति बहुत प्यार बढ़ाना, आत्माओं के प्रति सच्चा प्यार रखना। लेकिन इमोशनल फीलिंग अगर केवल इमोशनल है, अगर केवल भावुकता है, उसके साथ शक्तिशाली संकल्प नहीं है, तो इमोशनल फीलिंग मनुष्य को नाजुक बना सकती है। इसलिए भावुकता अच्छी चीज है। वो मनुष्य जो इमोशनल नहीं है, उसका जीवन भी ड्राई हो जाता है। इसलिए जीवन में भावुक होना भी आवश्यक है, परंतु साथ साथ शक्तिशाली बनना भी उतना ही आवश्यक है। तब हमारे इमोशंस हमारे जीवन को श्रेष्ठता की राह पर ले जाएंगे। ठीक है, वैसे तो ये एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, इमोशंस, अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन देना। हमारे इमोशंस हमें निगेटिविटी की ओर न ले जाए, इसका ध्यान रखना, ये भी जीवन में बहुत आवश्यक होता है। इसलिए बाबा ने दो शब्द हमेशा जोर दिए, भावुकता भी होनी चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग करो। भावना, हिंदी में कहते हैं भावना और विवेक, इमोशनल भी हो और इंटेलेक्चुअल भी हो, दिल से भावना हो और बुद्धि से विवेक हो, दोनों का बैलेंस जब जीवन में चलता है तब हमारा जीवन और शक्तिशाली बन जाता है। मैं जो आपको एक बात कहने जा रहा था, बाबा ने उस दिन कहा कि कभी भी भाई न उठाओ। भाई करने से क्राई करना पड़ता है, हाय हाय होती है, वाह वाह करो। तो हम जब इस संसार को देखते हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों को देखते हैं, इस ड्रामा के भिन्न भिन्न सीन देखते हैं, तो क्वेश्चन उठता है मन में, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। परंतु इस क्यों से कौन मुक्त हो सकता है? कुछ ऐसे भी लोग हैं हम में, ब्राह्मणों में, जो क्यों नहीं उठाते, जो इस संसार को पूरी तरह साक्षी होकर देखते हैं। इसी बीच में मैं एक बात कहूं आपको, किसी ने एक प्रश्न किया कि भगवान इस संसार के ड्रामा को क्यों नहीं बदलता। हम कहते हैं ना कि ड्रामा इटर्नल है, बना बनाया है, शिव बाबा भी इसको बदल नहीं सकता। तो लोग प्रश्न पूछते हैं, ब्राह्मण भी कहीं कहीं पूछते हैं कि भगवान तो ऑल पावरफुल है, वो इस संसार के ड्रामा को क्यों नहीं बदल देता, कई सीन इसमें अच्छे नहीं हैं, उनको बदल देना चाहिए। भगवान जो रहमदिल है, जो सबका कल्याणकारी है, उसको ये खराब सीन कैसे अच्छे लगते हैं, उसको बदल देना चाहिए। तो मेरी बुद्धि में इसका एक बहुत अच्छा उत्तर आया, जो मुझे बहुत काम आया, वो ये है कि भगवान को इस ड्रामा का हर सीन बहुत प्रिय लगता है। एग्री हैं आप इससे? उसको इस ड्रामा का हर सीन बहुत अच्छा लगता है, हमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता हमें? क्योंकि हमारे पास स्वार्थ है, हमारे पास कामनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, हम अपना अच्छा चाहते हैं, दूसरों का अच्छा नहीं चाहते, इसलिए हमें ड्रामा के बहुत सारे सीन अच्छे नहीं लगते। शिव बाबा को हर सीन अच्छा लगता है, इसलिए वो इसको बदलता नहीं। अब इसमें धारणा आ गई बहुत अच्छी कि जब शिव बाबा की तरह हमें भी ड्रामा का हर सीन, हर व्यक्ति अच्छा लगने लगे, प्रिय लगने लगे, तब हम बाप समान बन जाएंगे। जैसे बाबा को सब कुछ अच्छा लगता है, क्यों नहीं उठता बाबा के मन में, हमारे मन में भी जब क्यों न उठे, हर सीन अच्छा लगे, जब हम ड्रामा के हर सीन का आनंद लेने लगे, तब हम बाप समान बन जाएंगे। इसलिए अगर क्यों को समाप्त करना है तो नॉलेज फुल बनना पड़ेगा, फुल नॉलेज। जिसके पास फुल नॉलेज है, उसके पास किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर, इस संसार के किसी भी सीन को देखकर क्यों नहीं उठता। इसलिए सभी को लक्ष्य बनाना है कि अगर मन में कभी क्यों उठता है, एक व्यक्ति कुछ अच्छा पार्ट नहीं प्ले कर रहा है, मन में उठता है ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उस क्यों का उत्तर जानना है। अगर हम क्यों का उत्तर जान लें, किसी आत्मा के साथ कोई घटना क्यों हो रही है, मान लीजिए एक परिवार में दो व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति बहुत शांत है, दूसरा व्यक्ति अग्रेसिव है, उसको सता रहा है, कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, लोगों का प्रश्न उठता है ये व्यक्ति इसे क्यों सता रहा है। पर जिनके पास फुल नॉलेज है, जो कर्मों की गति को जानते हैं, वो ये जानते हैं वो व्यक्ति उसे क्यों सता रहा है, इसलिए उनके पास क्यों नहीं उठता। इस बार ही बाबा ने कहा कि जो सारे कल्प ट्री को जानते हैं वो एक एक पत्ते को भी जाने, उन्हें एक एक पत्ते को भी जानना चाहिए, उन्हें एक एक आत्मा के कर्मों की गति को भी जानना चाहिए, तब मन में क्यों नहीं उठेगा। और इस जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम नॉलेज की भी अच्छी स्टडी करें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी बुद्धि को पूरी तरह स्वच्छ रखें। हम एक अभियान चलाएं अपने जीवन में, एक प्लान बनाएं, एक एक्शन प्लान बनाएं कि अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है। अगर हमने इसमें कोई गंदगी कभी भर ली है पास्ट में, उसको हटाएं और अब कोई भी गंदगी इसमें भरने न दें, कुछ नहीं देखें ऐसा जिससे गंदगी हमारे अंदर आ जाए, तब हमारी ये स्वच्छ बुद्धि ज्ञान को गहराई से समझ सकेगी और तब हम इस वर्ल्ड ड्रामा का, इसके हर सीन का आनंद ले सकेंगे। जो अच्छे सीन होते हैं उनका आनंद तो सभी लेते हैं, लेकिन वो सीन जो हमें अच्छे नहीं लगते, वो भी अच्छे लगें, उनका भी हम आनंद लें, तो हमारा ये पूरा जीवन आनंद से भर जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस में इस एक बात को भी सभी ले आए कि जो कुछ दिखाई देता है वो सब हमें अच्छा लगे, सब प्रिय लगे, हम उसको बदलना न चाहें। जैसे शिव बाबा इस ड्रामा को बदलना नहीं चाहता, हम भी इस ड्रामा को साक्षी होकर देखें और वर्ल्ड ड्रामा का आनंद लें। ऐसा करने से हमारी नेचर भी बहुत सुखद बन जाएगी और हम अपने जीवन का आनंद लेंगे। तो फिर से आपको याद दिला दूं, भगवान से आप सभी ने दोस्ती कर ली है, हाँ, तो दोस्त है वो, खुदा दोस्त, गॉड फ्रेंड, वो अब आपके साथ रहेगा और वो चाहेगा कि जैसे मैं, जैसे शिव बाबा हम सभी दोस्तों से दोस्ती निभाता है, मदद करता है आवश्यकता में, साथ रहता है, वैसे ही हम भी उसके दोस्त बनकर उसके साथ रहें, उससे दोस्ती निभाएं, उसकी इच्छाओं को पूरा करें, उससे ही प्यार करें, तो वो हमें सदा प्रोटेक्ट करेगा, सदा सुरक्षित करेगा और हमारा जीवन इस संसार में ऐसे ही हो जाएगा जैसे हम कलयुग में नहीं रहते, अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं। इसी नशे के साथ अभी हम सब 3 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे। एक संकल्प आपको देते हैं जिसका आप अभ्यास करेंगे अपने जीवन में भी, कि ऑल माइटी से सभी शक्तियों का एक फाउंटेन हमारे ऊपर उतर रहा है, सारी शक्तियां भिन्न भिन्न कलर के रूप में, एक कलरफुल फाउंटेन के रूप में हमारे ऊपर उतर रही हैं, इसलिए हम बहुत शक्तिशाली हैं। ऑलमाइटी स्वयं हमें शक्तियां दे रहा है। इस चिंतन के साथ अभी हम 3 मिनट के लिए कलरफुल फाउंटेन के नीचे बैठते हैं। ओम शांति।